अजीना ग्रामी इंसान का इस कायनात के साथ रिश्ता एक ऐसा रिश्ता जो शायद इंसान की तकलीफ से पहले ही आए नहीं पाता। ये ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ बना इस कायनात में वो सारा का सारा उसके सामने नहीं मिला। कुरान मजीद में कहा गया बलकत माता नाम बिलास और जाना डकुम माती हा मवाइश अली मशरू जो हमने तुम्हें जमीन पर मुकम अक्सर और जाना डकुम थी हा मवाइश और इसी जमीन से हमने तुम्हारी मईशत को करार दिया कलीलन मत शरू इसे तुम लोग कम अल्लाह का शुक्र यानी जमीन पर पैदा होना और जमीन से इंसान को मरीशत पर होना और मरीशत की तरक्की होना और तालियों को इंसान का मरीशत के साथ ये सारी शुक्र करने वाली बातें हैं और गंदगी का तकाजा भी है एक अल्लाह की बारगाह में अपनी तकलीफ का शुक्रिया भी अदा किया जाए सेहत का शुक्रिया भी अदा किया जाए जो मरीशत की सहायता करवाई है उस मरीशत का शुक्रिया अदा किया जाए। इस ताल्लुक को बयान किया उसने अपने दंडे और उस कायनात में तो बहुत सारी चीजों उस ताल्लुक को सूर्य ने कहा मंदिर हमने समाए मान कमी बहुत शराब होगी कमी बहुत सजन होती है तस्वीर जिनमें जो लगू मेरी दर्रा को देखना देखो जो आसमान से पानी बरसता है ना ये भी तुम्हारे लिए मम्मी हूँ शराब हूँ इसे तुम पीते हो मम्मी हूँ शजन हूँ और तुम्हारे अशार भी पीते कोई मुझे रखू मेरी जरा वजह सुना नकली बता दे तो बिल्कुल ले समझाती और ये तुम्हारी रंग दर्द की जरा तुम्हारी चेतना और फिर हरों के मुख्तल नाम दिए उन्हें खुद ऐसे मनाती और सारे बिना भी गाली का लिया जाते हैं कौन नहीं पता करूँ ये सारी हमारी निशानियां जो उस कौन के लिए है तो जो तकबर और गौरव की कर सकती है। आप ये देखिए कि बलाह की ये भी बात सकती है कि हरों का नाम लिए जाए खेल का नाम लिए जाए जरा के नाम लिए जाए आसमान के रखने वाले पानी के नाम किए जाए ये तो हमारी रोजमर्रा की मामला है लेकिन ये रोजमर्रा सुनकर हम इनसे बहुत फ्रीक्वेंट हमारी मुलाकात हो रही है हमारे नजरों में इन बातों की और अहमियत खत्म हो जाती है क्योंकि कुरान मजीद कहता है ये अल्लाह की निशानियों में से तो अल्लाह निगरानी ये परवरदिगार आलम ने इंसान के लिए कायनात को खत्म किया उसकी वजह यह है कि इंसान और कायनात के दरमियान एक रब का ताल्लुक अच्छा अब इस रब का ताल्लुक का दूसरा हाल भर रहा इसे स्पेनिश कैसे किया जाए बराबर करना हूं फिलहाल हमने जो है जमीन पर कमकर रखी यानी जमीन के साथ हमारा एक रिश्ता जमीन के साथ तो हर एक का रिश्ता है हर जीव का रिश्ता है दरख्त का रिश्ता है जानवरों का रिश्ता है इंसान का जमीन के साथ रिश्ता है तो क्या सदन में जमीन होना काफी है कि इंसान सारी नियमतों का तस्वीर हासिल कर सके बड़ा अहम सवाल है जमीन होने के कारण क्या आपको आजादी मिल गई जो चाहे वो जमीन की नियमतों पर से हाथ डाले और उठा दे और उसको कोई रोक टोक मेरे तरफ को जहाँ चाहे आप लगाए वो जब दिल चाहे जमीन से पानी पीछे जब दिल चाहे सुबह से रोशनी है जब दिल चाहे फूल लिखिए जब दिल चाहे सुखन लिखे इस पर आप पाबंदी लगा सकते हैं जानवर का बता सकते हैं जानवर का जहाँ दिल जाता है पानी पी लेता है जिस चीज को चाहे वो उतर लेता है जिस चीज को चाहे छाया देखे वहां से हो जाता है उसका वजन में नहीं होना काफी है कि वो खुदा की नियमों से फायदा उठाए और उसकी उसको रोक रोक नहीं लेकिन इंसान के लिए मुमकिन है कि जहां चाहे जो चाहे खा तो खा ले जिधर चाहे ताकत हो जाए जिधर चाहे जिस चीज को चाहे वो समय मिले घेर दे अपने घर में ले जाए جب آپ کا ارادہ اور اختیار تین چیزوں سے ہوں تو پھر اس کی حقوق کو سمجھ نہیں رکھا اس نے فرائض کو ایڈ کر دیا. یہ جتنا تم فرض انجام دے گا اتنا تمہارا حق جو ہے اسٹیبلش ہوتا چلا جائے گا. فرض نہیں ہونا حق کے لیے کافی نہیں ہوتا, لہذا انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ چہرے مسلسل اور کوششیں پڑے ہم کرتا جو اس کی عقل کا فرض ہے, جو اس کے ارادے کا فرض ہے, جو اس کے اختیار کا فرض ہے. اور پھر یہ دیکھیے ادھیان گرامی اس انسان کے لیے کہا گیا کہ ہم نے تمہیں زمین جو ہے وہ انشاءاللہ تمہیں راضی بس سمر تم کی حافظ کا کوئی نہیں, ہمیں تمہیں زمین سے لگا دیا انشاءاللہ تمہیں راج زمین پر پیدا نہیں کیا انشاءاللہ زمین سے لگا بس تمہارا کم سیکھا. تمہارا کام کیا ہے؟ زمین کو آواز ہے بس کا فرم ہو. اسی لیے ہماری معقول محبت یعنی انسان کے عظیم کاموں سے یہ کام یہ ہے کہ اس زمین میں آواز کتنا محلاتی رہی شہروں میں سکون ہو, آبادیاں بے خوف اور پر اطمینان ہو. جب یہ سچویشن ہوگی تو انسان نے اپنے اس حق کو ادا کر دیا کہ جس وجہ سے اسے زمین پر جناب میرے مومن نے اس ڈاکیومنٹ میں جو آپ نے مالک اشکر کے نام لکھا اس میں مالک کو حکم دیا اے مالک شہروں میں تمہارے فرائض کیا ہیں, جنا ایسا فرا کیا جہاں رہا ہوں وہ استحصال ہے اے مالک تیرا کام یہ ہے کہ تو خراج کو محدود طریقے سے وصول کرنا ریونیو جمع کرنا, تمہارا کام یہ ہے کہ دشمنوں سے جہاد کرنا انہیں لوگوں سے دور کرنا بس اصلاح اہل حال اور تم لوگوں کے احوال کی فلاح کی طرف توجہ دینا مارتا بلا دہار اور اے مالک شہروں کو آباد کرنا. میرے جیو یہ بہت اہم بات ہے کہ دین کے تعلق سے اور لا الہ الا اللہ رسول اللہ کے تعلق سے اگر ہمارے شہروں میں بے چینی ہو, بے رونقی ہو اور خوف و حیران سا عالم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے نہ ہم فصل نہیں ہونے کا پتا کر رہے ہیں نہ ہم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا پتا کر رہے ہیں. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ شہروں میں اطمینان آبادیوں میں بے خوفی ہونی چاہیے. تو اب یہ ہماری آبادیوں کے جو معاملات ہیں کیا وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ ہمارے معاشرے اسلامی معاشرے ہیں, ہمارے سماج میں اسلام کا کلچر قائم ہے, یا ہمیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سے بڑی محبت رکھنے کی. اگر ہمارے شہر بے خوف ہو جائیں, اگر ہمارے شہروں میں لوگ دروازوں پر تالے نہ لگائیں, اگر ہمارے شہروں میں جوان آرام سے شاہراہوں پر جائیں اور سلامتی سے گھر کی طرف واپس طرف آئیں تب تو ہم یہ کہیں کہ ہمارے شہروں میں اسلام کا کلچر ہے. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے شہر اسلام سے خالی. اور یہ بھی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے شہر اسلام سے خالی, نعرے لگانے سے, تقدیر بدل کرنے سے, رسول اللہ کی نعرے لگانے سے حق پورا نہیں ہوتا جب تک کہ توحید کے حوالے سے قسط عدل کا نظام ہو, امت باہر کا تصور ہو, شہر کو رونق ہو اور بستیاں بستی رہیں. میرے نوجوان دوستوں اگر ہم پیغمبر اسلام کی زندگی کا دیکھ لیں, پیغمبر میں نے گزشتہ تقاریر یاد کیا مدینے کیوں آئے تھے, یہ سب کیوں آئے تھے, 100 سال کی لڑائی کی اور سب سے سنتے ہیں. پیغمبر مدینے میں 30 میٹر کے طور پر انٹر ہوئے تھے امن قائم کرنے کے لیے, آبادیوں کو بچانے کے لیے, بستیوں کو پرونق بنانے کے لیے, بے خوف کو خطر ماحول کے پیدا کرنے करने के लिए, और वो हथियार जो दिन होता वो पांडे रहते थे किसी बंदे नहीं पूछते थे, उन हथियारों को करवा के और किसी गोशे में करवाने के लिए इंसान के अंदर भाईचारा और इंसानियत होनी चाहिए। ये इस्लाम का कल्चर है, यही वो तहजीब है जिसकी हमें तलाश करनी चाहिए, और यही वो तहजीब है जिसको चलने का दर्श भी हमें उस घराने से मिला जो मोहम्मद वाले। अगर बाबा चंद अकीदों और चंद रसूमात के पूरा करने में इस्लाम छपा हुआ होता तो ये भी बहुत आसान नुस्खा, लेकिन इस नुस्खे से होता क्या कि बहुत जल्दी इस्लाम की रूह गायब हो जाती। इस्लाम की रूह रसूमात में नहीं, इस्लाम की रूह नाम में नहीं, इस्लाम की रूह उस पैमान में है जिससे इंसानियत को फलाह मिलती है, और वो रूह है क़िस्तुल आदल। अगर फकत इस्लाम ये कहता, पैगंबर ये कहते फ़ज़लुल्लाह अलैहि वसल्लम तो कुछ और इतराज़ होता कपड़े। अगर कहते कि हमारा नशा फकत इतना है कि हम एक खुदा की बात मनवाने के लिए आए, तो उन माशों में जहाँ कभी खुदा चांद को कहा गया, कभी खुदा सूरज को कहा गया, कभी खुदा जानवरों को कहा गया, कभी 10,000 खुदा माने गए, कभी 300 खुदा माने गए, कभी 100 खुदा माने गए, उस माशरे में कोई क्यों उसकी बात की जगह कुछ ऐसे ही हुए खुदा से। देखिए ये तादाद की बात सुन रही है ना, ये कोई नंबर गेम तो नहीं था ना, कि पहले तुमने 360 खुदा रखे हुए काबू में, अब वो 360 को बंद करो, एक को मान लो। अगर बात सुबह नंबर गेम की होगी तो कभी भी इतनी रेजिस्टेंस न होगी इस बात को बहुत से सुनिए। और जिस माशरे में पैगंबर वो इस्लाम का कल्चर फरोग देना चाहते हैं, अजीजों कम से कम 2 रेजिस्टेंस की फोर्सेज हैं ऐसी कि जो फंडामेंटल रेजिस्टेंस देना पैगंबर की। पहला वो ग्रोह है जो कबीलों के सरदार है और जिनके हाथ में इंसान की जान और माल ऐसे है कि मुट्ठी खोले तो वो जिंदा रहे, मुट्ठी बंद करे तो जान का मामला खत्म हो जाए। इस तरह वो इंसानों पर हावी और उन पर हाथी। दूसरा ग्रोह वो था कि जिन्होंने सूदखोरी के जरिए से, तजारत के जरिए से लोगों के माल हत्या कर, जमीनों के जंगों के जरिए बच जाने माल पर तसरों करके बहुत सारा माल इकट्ठा कर दिया था, अब वो साहिबान इजहार हो गए थे, लिहाजा उनके हाथ में भी लोगों की किस्मतों के फैसले आ गए, तो वो भी किस्मत का फैसला करने लगे। ये दूसरा ग्रोह था, लेकिन दूसरे ग्रोह में एक चीज और भी शामिल थी, वो ये थी कि कुछ ऐसे सरदारों ने कबीला थे कि जो अपने अपने कबीलों के सरदार भी थे और ट्रेड के जरिए से, कॉमर्स के जरिए से, और ये सुदखोरी के जरिए से कि तीनों के मालों को खा खा के उनके पास बहुत सारे जरूरत एक किसान को भी वली बिन मुगीरा और अबू सुफयान इस कैटेगरी से बना। और इन लोगों को बड़े समझदार लोग थे, बड़े जमाने को चलने वाले लोग थे, अरे इतने होशियार थे अरब जिनने पैगम्बर ला इलाहा इल्लल्लाह की कहानी शुरू की कि निशाने कदम को देखकर शनाख्त करते थे कि गुजरने वाला खुश खुश गुजरा है या गमगीन गुजरा है। जरा तस्वुर कीजिए उनके अकल की, और क्या कोई समझते थे कि सारे जमाना ये कायनात जब दुख बना चलाई मैं इसका होता हूँ मन खर्च से मारे राश सूर्य निर्माण तुम इसे सवाल करो और सवाल करोगे मन खर्च से मारे वाला इस आसान जमीन को किसने बनाया, वो कहेंगे अल्लाह, वो कहेंगे अल्लाह ने बनाया। ये प्रश्नों का आला क्यों लिखते थे बैठक में आपके सामने तस्वीर से वो डॉक्यूमेंट तस्करा किया ना जो शेर निकालने के लिए वो जो कॉन्फिगरेशन बनाई अरबों ने अपने वे को आइडेंटिफाई करके इसको वैल्यू करो रास्ते कहता हूँ तो वो मोहम्मद अकरम से बहुत आसान तो क्या लिखा उसके ऊपर विष्णु काला तो 300 साल तो बना नहीं रहे थे وہ حبل لکھا لات لکھا مناف لکھا کیا بنا لیتے تھے اور انہیں اپنی جیبوں میں لے کر پھرتے تھے اور جب بھوک لگتی تھی تو ہلدے کے اس کو کھا لیتے تھے تو کیا خدا سمجھ کر کھا لیتے تھے بتوں کا سامنا اگر شیل رکھا تھا بھولے بھالے لوگوں کو بچائے رکھنے کے لیے دیکھو لاس بنا دیتا ہے خدا ناراضگی مول لے لو مناس تم سے ناراض ہو گیا تو کچھ بھی تمہیں نہ نکلے گا بھولے بھالے لوگوں کی عقلوں کو چکرائے رکھنے کا طریقہ تھا یہ بچ ورنا خدا کو حلوا سمجھ کر کون کھاتا ہے اور کس نے کھایا ہے کیسے معاشرے میں پیغمبر کا کہنا اے خدا کو یقین رکھو کیا کوئی بہت اچنبے کی بات تھی اس کا نام بدل گیا بہت اچنبے کی بات تھی ارے جس نے اس ہر دور میں علی مختلف مختلف اقسام کے نمبرز کو خدا مانا اس کے لیے کسی ایک دور میں ایک خدا نہیں صحیح لیکن پیغمبر اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے کہہ کیا رہے ہیں پیغمبر لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اس اسٹیٹس کو توڑ رہے تھے اس مٹھی میں بند انسان کی قسمت کو باہر نکال رہے تھے جب سفیان کی مٹھی میں تھی جب علی بن مغیرہ کی مٹھی میں تھی جو ابو جہل کی مٹھی میں تھی پیغمبر سے اس مٹھی کو کھول کر لوگوں سے مزہ अगर पैगंबर कहते हैं अगले महीने से रोजे रखो, यही लोगों को मार मार कर रोजे रखा देते। लेकिन वो लोग जो निशाने कदम से दिल के अहवाल को जाने, ये जाने वाला खुश था या गमगीन था, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जब सुना कि पैगंबर कह रहे हैं गरीब कुल्ले हो मजदूर को बता मिल जल्दी जमा मालूम बदला या भगवान ना मालूम बदला उसके लिए जो माल को जमा करता है दिन दिन जाता है जा मालो मत लगा वो समझता है कि ये माल से हमेशा जिंदा है। घोषणा क्या होती है वो ऐसी आग होती है जो सीने से शुरू होती है तो उन्होंने लाला के साथ किस मुमल्ला को सुना, किस चीज के खिलाफ पैगंबर बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के खिलाफ पैगंबर बात कर रहे हैं। उन्हें लाला जिंदा नहीं लगा उसका पैगाम बैनर सुतून, उससे उनकी फौरन स्थित होशियार हुई। ये क्या कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, आज में जुर्म किए जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ करने वाले। फिर पैगम्बर का पूर्ण लाएगा हर जगह सब लोग, तो इतना तो नहीं था पैगम्बर ने साथ साथ यही कर दिया था तो मतों का शुरू होता और लोग सब मतों का फिर तुम कसरत की तलाश में उठते जा रहे यहाँ तक तुमने कमरेन जा पूछी, वो सारा सीधा आप खुद आपके जहन में आ गया होगा। मुझे बताने के कोई ज्यादा ऐसा इंटेलेक्चुअल फायदा नहीं होगा क्योंकि आपके जहन में सुधा भी आ गया और शक्कर जीवन दिया। तो तुम कसरत की तलाश में उठते जा रहे यहाँ तक तुम कमरों में जा पहुंचे और ये कसरत जो है वो तुम्हें बर्बादी और तबाही की तरफ ले जाएगी क्योंकि इस कसरत से तुमने खुदा की मर्जी नहीं खरीदी। यानी एक होल्डिंग एक ताकत का जो सिंबल होता है तो उसके पास 1000 घोड़े हैं, 2000 ऊंट हैं, 5000 गुलाम हैं। पैगंबर कह रहे इस कसरत से तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो ये बातें बहुत से सुन रहे हैं, पूरे निदान को पैगंबर चेक कर रहे हैं, इससे किसको बतो रहे हैं। फिर पैगंबर का ला इलाहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह का सुन पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह इसमें तुम्हारे लिए फला है। आगे साथ फिर कह दिया हराज नजीब वजर मिदीन फजाल कर यह कहूं यतिमा फला यहजो अला ताव में तुसकी। झूठ कहते हैं ये कहते हैं ये लिया है राय से नजीब निकल जरो जितनी झूठ कहकर समझते हैं कि अल्लाह झूठ को पकड़ने वाला नहीं है। ये वही से लोग हैं ना कि जिनके माल को खा जाते हैं बजाले का गिराओ इतना बड़ा जोश वाला काम है। मिस्कीन मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते, भूखे का पेट नहीं भरते, माले यकीन को शक्ट कर जाते हैं, यानी कमजोर लोगों के हुकूक को पकड़ और मिलस्कून नहीं था आए दिन चलिए मर्दों का खत्म हो जाना और दो का खरीदे बन जाना और चंदों में औरतें शहरी बना ली जाती थी, बच्चे गुलाम बना लिए जाते थे। इस तरह वो फिर कॉन्ट्रेक्ट लेबर का काम करते थे, वो औरतें और बच्चे उनके लिए मजदूरी करते थे, उनकी धन इजाफा होता जाता तो हुकूम पे यकीन नहीं किए जाते थे, उनके माल तो जब्त कर दिया जाता था लेकिन उनके माल की हिफाजत या उसको तस्वीर देने का काम शक ही नहीं था। पैगंबर का कुल लाया है अल्लाह का प्रेम साथ में सूरह फजर पढ़ दी अल्लाह अल्लाह प्रेम न देखूं फला का सुना अल्लाह का मैं नसीब तो ताकि उन्हें थोड़ा सा ऊपर आने नंबर को तो ही पूरा माला होकर जाऊं। तुम लोग ये तीन का ध्यान नहीं करते जो कमजोर का हाथ नहीं पकड़ते तो मेरा सोचा पर खा जाते तुम्हारी फकत एक ही चीज का नजर है वो ये कि हमारे पास कसरत से माल जमा हो जाए चाहे किसी रास्ते से जमा हो जाए। सारे होशियार लोग फकत ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं सुन रहे थे, वो पैगाम रिक्वेस्ट को अजम पर गौर कर रहे थे। इस पैगाम को अगर ले उनके सोसाइटी के सारे स्ट्रक्चर को उनके स्टेटस को उसे तो इजाजत देने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को क्या वो हमारे सदियों पुराने उस स्ट्रक्चर को शेयर कर दो, हमारी सरकारियां हाथ में मिला दो और हमारे माल को इन भूखे नंगे लोगों में बांट दो और फिर बहुत सारे छोटे छोटे लोग हमारे बराबर आकर खड़े हो जाएं, सब में खड़े हो जाएं, बराबर में बैठ जाएं। इस हद तक मुतकब्बिर थे सरदार कुरैश के बदर की चल ने जब अब्दुल्लाह ने मसूद ने अबू जहल के सरे पर पैर रखा और करीब था कि उसे सर को काट देते तो अबू जहल ने हालत जख्म में इंतहाई तकब्बुर से अब्दुल्लाह ने मसूद की तरफ देख कर हकारत से कहा, क्या मेरी मौत तुम जैसे हकीर के हाथ मारी? कोई सरदार नहीं था जो सर पर ये हालत तकब्बुर थी, ये उनका मौत सामने है, मारा गया मुझे और अब्दुल्लाह ने मसूद को हकारत से देखा था कि तेरे हाथ में मेरी मौत आई, तो बड़ा आदमी मेरा सरकार है, मरना भी वो छोटे लोगों के हाथों हवाला नहीं करते थे। जब सरदार ने रबिया अद्दा बिन रबिया शिवा बिन रबिया वलीद बिन अतबा निकल कर आए बदर के मैदान में तो अंसार आगे बढ़े इसके मुकाबले के लिए, कहा कौन लोग हो तुम? उन्होंने बताओ पर आए पर तुम कैसे हो, न तुम्हें कोई जाने न तुम्हें कोई पहचाने, हकीर लोग घटना से लोग सबने चलो, उन्हें हमारे कंपेटेबल लोग चाहिए, हम बैठे लोगों से लड़ाई करके क्या करेंगे? अंसार हैरान रह गए, पैगंबर को दस्ता वापस लाना पड़ा और फिर पैगंबर ने उनके मदे मुकाबिल वही सरदार पेश किए जिनसे वो चाहते थे। क्या लोगों से लड़ाई हमारा काम नहीं है, दुश्मन को पहले ही पहचान चुके कि हमारे दुश्मन ये अंसार ये मदीने के नए नए मुसलमान ये हमारे दुश्मन थोड़े हैं, वो जाने वाले शेर मुताबिक ने अब उतारे थे अबा के सारे के अंदर उन्हें निकाल कर बाहर जाओ, तो पैगंबर ने किसको भेजा? हमजा को पेश किया, तो बेटा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब को पेश किया और अली ने मुर्तजा को पेश किया और उन्हें पेश किया। जब ये तीन मैदान में आए तो उन्होंने अपना नाम उतराया अरब के तहसूल के मुताबिक देखा अच्छा बिन रबिया शिवा बिन रबिया वली के दस्तान अब हमारे मुकाबले के लोग हमारे सामने था क्रॉसिएशन। अब ऐसे में तो फसल करो अगर पैगंबर किसी हल्के फुल्के खानदान का होता और किसी हल्की फुल्की क्लास का होता और उनका मैच ना होता तो चलने देते ये ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, परवरदिगार ने पैगंबर को उन गोदों में प्रदान चलाया और उस घर में पैदा किया जिसके मुकाबले का अरब की तारीख में कोई खानदान पैदा ही नहीं हुआ। और बरात की आयात यानी उसे हमारी बेजारी किससे लेगा इंसानों से बेजारी नहीं उस कर्ज फिक्र से लेगा जिस कर्ज फिक्र में इतना तकबर को शैतान क्या कहता था को तुम बहुत हो सकते हो हम तो मेरे आदमी अपने आप को आदमी तकबर तो होता तो पसंद नहीं तो ये बरात की आयात मालूम हुई जिसमें बेदारी का इजहार किया गया उस कर्ज से फिक्र से उस सोच से कि जो मुतकब्बिर सोच है जिसमें इंसान खुदा के बंदे के हवाले से नहीं पहचाना जाता अपने स्वेटर के हवाले से बताना चाहता है तो पैगंबर से कहा कि इस आयात का भी तुम्हारे को सुंदर बहुत मशहूर वाकया है बरात की आयात अब ये पैगंबर अब किस मौके पर करवाए जाए मकाम मौके हज जब सबसे बड़ा इज्तम होगा तो पैगंबर बरात की आयात करवा दीजिए पैगंबर ने एक बुजुर्ग शख्सियत को मुंतखब किया अच्छा बरात की आयात क्या है बरात की आयात ऐलान जंग है उन तमाम लोगों के साथ जो क़िस्त और आदर के मकाम हुए इसके अलावा कुछ नहीं हाँ पिछले दिनों जब अफगानिस्तान में जंग शुरू हुई अमरीका की जंग रशिया का हुआ तो यहाँ से चाइना बॉर्डर चाहिए थे ना तो बरात की आयात को जहाज पर किसी को गरीब रंग देकर एक ऐसी शक्ल में सिलेबस में शामिल किया गया तकरीरों में शामिल किया गया सरमर्स में शामिल किया गया ऐसे लगता था कि मुसलमान महावेर की बात कर माता है कताल 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 हालांकि बरात की आयात उस जंग और उस लड़ाई की तरफ मुतवजा करती है जहाँ क़िस्त अदल पामाल हो जहाँ जुल्म सितम पर नाश हो और जहाँ बंदा अल्लाह के अलावा किसी और हवाले से उसकी शनाख्त को क्रिएट किया जाए उसे कहते हैं बेगानी ऐसे जहाँ बेगा और ऐसे से हमारी लड़ान इसलिए बरात की आयात पर पैगंबर ने एक बुजुर्ग शख्सियत को कहा ये आयात लो और जाकर मकाम नया मौका हज में कुफारे परेश सामने इनका इलाज कर दो इन्हें कम्युनिकेट कर दो फैला दो उन्हें बता दो बात की छुट्टी थी बात छोटी सी थी ये आखिरी फैसला था ये कुदरत का बरात की आयात के जरिए से आखिरी फैसला था कि अब हम वो तमाम लोग उसके खिलाफ खड़े हम उनके साथ क्या करना चाहते हैं और हमारा उनके खिलाफ क्या स्टांस होगा ये मामूली बात नहीं थी और ये बात कौन कहने का हकदार था जिसकी तारीख है उस तारीख में उसने इस प्रश्नवादन के लिए एक ऐसे डिफाइन समझा रखा हो कि कभी भी उसूल पर समझौता न हुआ पैगंबर ने एक बुजुर्ग शख्सियत को वो अपना क्या लेकर रवाना कर दिया उधर फरिश्ता उतरा तब पैगंबर ये क्या करते हैं पैगंबर ये क्या करते हैं ये तो आखिरी बात है जो हम कर रहे हैं और कुफार को कयामत का चैलेंज है इस आदमी पर हमला आवर हो गए तो हम ये इंसान करेंगे बात या तो इन आयात की कम्युनिकेशन निर्दा खुद करें और रचल उन्न का उस मत से करवाए जो आप ही का हो निंदा आप ही से हो या खुद करें या उस मत से करें जो आप ही से हो मैं हम तो भेज चुके थे फौरन दौड़ाया रुको जाओ नहीं जाओ बरात की आया तुम्हें एक सवाल को दौड़ाते हुए और ये मुझे पहुंचे बरात की आया के लिए आपने हमारे घर को आया था मेरे हवाले कर दे और वजीर मिलता हुक्म है पर दिला था क्या पैगंबर खुद करेंगे या वो मर्द जो उनसे मुझे अगले वाली बात तो ठीक है दिल टूटने वाली बात तो ठीक है फिर ये दिल से टूटे से बहुत दूर तक था फिर इतना कुछ टूट गया कि हाँ रिश्ता इतना जो आज तक नहीं जो कहा कि क्या मेरे खिलाफ कोई आगे अपना नहीं हो लेकर नहीं कोई आगे घर अपना नहीं बस पैगंबर ने कहा कि या पैगंबर कोई नाराज की तकनीक का हुक्म है या और अचानक का उम्र जो उसको अच्छा जब आया दे दी आप से नाराज नाराज वापस आ गए और जिनको कहा कि जाओ तो जरा पूरी तैयारी के साथ मैदान लेना मौके हज में पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने हताश करना शुरू किया बराती आयात पढ़ने लगे, इस बार गौर से सुनते हैं, गौर से सुनते कौन पढ़ रहा है, अधिकारी पढ़ रहा है, कौन ये बात कह रहा है, अभी ये बात कह रहा है, समझी ले रहा है, भाई वो तो आयात की सलामत कर रहे हैं, आयात में सुनती है तो इस सुनाने से मुखालिफ सुन देंगे, तो अभी क्या है, खामोशी सुनते रहे जो आयात की तलावत मुकम्मल हो गई, तो जिला कहाँ हो अपने इतने हम से कहना कि आज के बाद हमें और तुम्हें एक ही चीज फैसला करेगी, वो होगा मेरा और तुम्हारा, कहने वालों ने भी सोच के किसी के सामने था, अगर किसी ऐसे ऐसे भी कहते कि ले जाओ तलवार लोग डर जाते हैं, मैदान से चले जाते हैं, दो दो तीन दिन में पता नहीं होता, तो कहने वाले भी सामने वाले को देख रहे थे कि अब हमारे और तुम्हारे दरमियान अगर कोई और कह रहा हो तो कहते प्लीज उनको भेजो जिनसे हम अपना बराबर समझ के बात को कर सकें, बदलने कैसी थे चलो यहाँ सैटो हमारे बराबर के लोग आए, तो बरात की आया तो नहीं कह देते आप अरे कभी अरे तुमने लाल निकाली कभी लेकर चलाए कभी मुकाबला किया कभी लेकर चलाए आप चले हमें चिट्ठी देने करी, बरात की आयात पढ़ी मैं इस बरात की आयात वक्त में नहीं पढ़ना चाहती, ज्यादा बरात की आयात इतनी सारी लड़ाई जंगल जंगल पर है किसने क्रिस्टल वाले अमेरिका और रूस के लड़ने के लिए नहीं थी बरात की आयात, क्रिस्टल वाले भी बहाले से होते हैं बरात की आयात, सारे देना को बाद कितनी बेइज्जती हो जाती सामने वाला जब बरात की आया की तलावत कर रहा था तो सुनने वालों के नजरों के अंदर उसकी बदन थी उसकी औरत थी उसकी हरकत थी उसकी हंगत थी उसकी हुनैन भी थी उसके पास करके तरफ भी था सारा लगता एक तरफ और सत्तर हाथ की हिफाजत करता रहा, ठीक दुश्मन सामने था ठीक मुकाबला है पर हमने और तुम्हें आज के बाद ले जाओ तो मान देना कोई चीज फैसला नहीं कर सकती, उन्होंने अपना फैसला कर दिया अली उस फैसले को कबूल कर दिया और आप बरात की आयात का फिर ला करके पैगंबर के पास वापस तशरीफ ले आए, पैगंबर ने पूछा होगा ना ये क्या मामला हुआ, पूछा ही होगा उसने कही नहीं था बताया होगा नहीं क्या मामला हुआ ये भी बताया होगा, उन्होंने कहा कि हमारे तुम्हारे दरमियान अपने गाँव से बात करूंगा कोई चीज फैसला पैगम्बर ने बिल्कुल तसल्ली दिया कि घबराना नहीं खुदा तुम्हारे साथ है, बड़ा मशहूर जुमला है पैगम्बर का, एक आदमी तारीख में रस्म किया गया जब लोग डर गए तो पैगम्बर ने कहा घबराना नहीं खुदा तुम्हारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, पैगंबर ने ये कहा नहीं घबराना नहीं खुदा हमारे साथ है, पैगंबर को कहने की जरूरत नहीं कौन है अली अली को नहीं पहचाना मगर भाई और खुदा ने मुझे नहीं पहचाना मगर खुदा ने अली नहीं और खुदा को नहीं पहचाना मगर भाई और बहन नहीं, तो अली को कहने की जरूरत नहीं अली खुदा हमारे साथ है, और पहला जिला कहना चाहिए था अली घबराना नहीं, जिनकी समझ में आया है जिनकी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा अपने तारीख के थोड़ी सी मिला पूछो आगे चलाओ तो हम की जरूरत पता नहीं क्या हो जाते तो अली ने पूछा तो होगा ना क्या हुआ, तो अली ने बताया कि होगा क्या हुआ, ठीक है अली तुम जानो तुम्हारा मामला जाने, तुम जानो तुम्हारा मामला जाने। उन्होंने कहा तुमने सुन लिया, उन्होंने चैलेंज किया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया। पैगंबर का हमको इब्लाग करना है, तबलीग करना है, बात पहुंचानी है, बाकी तुम जानो और इस मुझे तुम जानो। अल्लाह को इस अदब की हिफाजत में अली इब्न अबी तालिब ने जिस जान निशानी का मुजाहरा किया। उमर बिन अब्दुल अजीज बनी उमैया के मशहूर और मारूफ हाकिमों में से एक, जिसे क्रेडिट पर ये बात जाती है तो उसने मेम्बरों से होने वाली अली इब्न अबी तालिब पर लानत, जिस रस्म को माफिया ने शुरू कराया था उस रस्म को उसने, यही उमर बिन अब्दुल अजीज थे कि जिन्होंने बाबे फिलक वापिस औलादे फातिमा को किया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने जनाब अली की शान में बड़ा जीत लिया। कहा अली ने ऐसा फिस्को अदल का निजाम नाफिस किया और ऐसे फिस्को अदल की बात की कि पिछड़ों को भुला दिया और आने वालों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। ना पिछले उन्हें मैच कर सकते हैं ना अगले उन्हें मैच, यानी माविया मदीने आया जब उसकी अच्छी खासी हुकूमत शायद अमीर मोमिन के बाद जम चुकी थी और वो झूमता था ऐसे लोगों को कि जिनके बारे में उसने जरा भी तरीका हो कि वो अली इब्न अबी तालिब से मोहब्बत करते हैं या उनकी तारीफ करते हैं या कभी उनके करीब रहे हैं। बहुत सारों को कभी करवा दिया, बहुत सारों को तहरीर कर दिया, बहुत सारों को जेलों में रख दिया। एक खातून मदीने में मशहूर थी, उनका नाम था दानिया दुनिया। उनके लिए मशहूर था कि जनाब अली मुर्तजा की बहुत तारीफ है। मादिया मदीना आया और उसने दानिया दुनिया की तलाश कर ली, दानिया को हाजिर किया गया, कहा कि मैंने सुना है कि तुम अली की बहुत तारीफ करती हो। कहा अब बेटा कहा उनकी तारीफ क्यों करती हो, इसलिए कि वो फकीरों के दोस्त थे और तुम गरीबों के गुर्बत के साथ खेल सकते। मैं इसलिए अली की तारीफ करती हूँ तो वो अर्ज और इंसाफ का बेहतर थे और तुम जुल्म और खूनरेजी का बेहतर थे। मैं इसलिए अली की तारीफ करती हूँ कि वो हम जैसे छोटे इंसानों के साथ बैठ जाया करते और तुम हम जैसों के सरों को रोनते हुए आगे बढ़ जाते हो। मैं इसलिए अली की तारीफ करती हूँ कि हुकूमत इस्लाम ने उनको आपे से बाहर नहीं किया था, जिस तरह हुकूमत इस्लाम ने तो आपे से बाहर कर दिया। ताजा से बसा इतनी लंबी बात जमीन पसीदा सारे लोग सुन रहे आप कभी अली की बातें सुनिए। कहा अली की बातें कैसी थी अली की बात, कहा ऐसी जैसे अली बर्तन पर चमकाती है, अली की बातें हमारा दिल चमका दिया करती। बात आगे बढ़ रही ऐसे नहीं बोल तुम्हें कुछ चाहिए सवाल करो हम देंगे, उसने अच्छे अमाउंट को दे दोगे। कहा जो मानोगी दे दूंगा, कहा सौ से कौन दे दो, सौ सुरहूज अरब में सुरहूज इतना वैल्यू है रेडो भी नहीं खाए, सौ सुर को दे दो लाओ दे दो सौ सुरहूज को मेरा पास खड़ी हो कम मैंने तेरे पास दिए सौ सुर को शुक्रिया। तू जाने लगे तो ठहरो, इतनी अली की तारीफ करती थी अगर अली जिंदा होती तो तुम्हें मुंह देते। अली जिंदा जाएगा, अली जिंदा होते तो तुम्हें देते सौ सुरहूज مجھے سو وہ کیا مجھے باندھی نہیں دیتے. اس کی جگہ مالے عوام ہے اور علی کبھی بھی عوام کا مال ظلم سے ایک ہاتھ سے پھینک کر دوسرے ہاتھ سے نہیں دیا کرتے تھے. بڑی جان فدا کیا شہادت علی کے بعد ایک مقام پر مارا. معاویہ نے دوستی رب کو چھنا, ان کے تین بیٹے لے کر بات علی بتایا, تینوں سے تین میں جناب علی مرتضیٰ کی طرف سے لڑ کے دوسری معاویہ نے دوستی رب پر بات کیا. ذرا ان پر تانسن کہا, اے ابھی تو تمہارے تینوں بیٹے ترسا کلیم اور ٹاگر کہاں گئے؟ بڑے جنان کل سے جگا دیا کہ وہ سکرین نے علی پر اپنی جان فدا کر دے. مجھے نے کہا جب کوئی انصاف نہ ہوا, علی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, اپنے بیٹے بچا لیے اور تیرے تینوں بیٹے جنگ کے ہاتھ میں چھوڑ دیے. عجیب نے حاضر نے کہا, میں نے بھی علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا, علی قتل ہو گئے اور میں زندہ رہا. علی
علی ہی علی ہے,
निकलता ये माने गुस्सा डाले इस्लाम में बहुत बात थी ये ब्याह क्यों थे माँ का एक शुक्रिया है माँ का अपने माँ और बाप के लिए जब आपने ऊंट पर खड़े होकर जताब किया कि क्या मैंने किसी का फर्ज किया किसी का माल मेरे जिम्मे है कोई दिल को नुकसान पहुंचाया हर तरह से आवाज आई नहीं आप झूठा दूर करना चाहते और ये किसी की बात कर दूंगी तो अपना जरूर आपको सुनाना चाहिए आपसे क्या इच्छा करना ना जाए माफ करना चाहे बेटा मुझसे दो ही बातों पर इस्लाम करना है या मैं सर बनाने के लिए तैयार हो जाऊँ या मैं जमीनों के हाथ में अपना हाथ दे दूँ हाँ मन्नत जिल्ला हुसैन और जिल्लत का ये सौदा मैंने आकर्षी का दूर किया उनमें से कोई भी इस बात के लिए राजी न होगा मैं चंद रोज की जिंदगी के लिए इज्जत की मौत को अपने हाथ से जाने दूं ये कहकर आप आमाए जानी वो सुधयाशू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसी तैयारी की ऐसी मुकम्मल जंग की तैयारी बदलती गए इसके बाद आशा पदा बख्तर जी ने कहा कि मां पत्ता खबी विद्या मजा है मैसा या महर है सुबह अजमान बना जा हुसैन ने ऐसे रश्य को तकलीफ किया बदलती गए इसके बाद आशा पदा बादशाह ने अपने लश्कर को तकलीफ किया बख्तर जी ने कहा कि मां पत्ता बिल्कुल ऐसे जैसे चांद के सितारे तस्वीर दिए जाते हैं खबीर इब्ने मुजाहिद मैसरा या आपने अपने दोस्त खबीर इब्ने मुजाहिद को मैसरे पर निगरान मुकर्रर कर दिया महर मुहर जुहैर अजमान अल्लाह आपने चांद से चेहरे वाले जुहैर इब्ने कैन से कहा जुहैर मैं मना तुम समझना उसके बाद आपने अलम उठाया अलम दर दस्ते अब्बास के खिलाफ बरशाने अली दर फौजे पैगंबर फिर आपने अलम उठाया अपने भाई अब्बास से हाथ में दिया हमें बनी हर से हाथ में दिया ये उसी शान से जिस शान से पैगंबर अपना अलम अपने भाई अली के हाथ में दिया करते थे सलम दे दिया हमरे बनी हाशिम के हाथ में अलम चला गया उधर जंग शुरू हो गई और शहजादे ने इजाजत चाही तो इतना कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास रमदार पहले नहीं जाया करते वो लश्कर छटने लगा वो जवान खत्म होने लगे वो लाशें उठा उठा कर जाकर एक खेमे में रखी जाने लगी जब सारा लश्कर खत्म होने लगा तो फिर जनाबे अब्बास ने कहा अब मुझे इजाजत दे दीजिए और नहीं भैया तब तक तुम मौजूद हो जनाबे ज़ैनब की बीवियों की बच्चों की झारस है जनाबे अब्बास से अच्छा पैदा हुआ ऐसा न हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो शहीद हो गए और मुझे छोड़ दे बीवियों और बच्चों की झारस मेरे नाम से है इस जुमले को सुनकर आपने बड़ी हैरानी और परेशानी पैदा हुई लाओ सकीना सकीना दीदी अब्बास ने कंधे का नाश्तो रखा और गोद में बच्ची को उठा लिया इस आलम में आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुए इमाम ने चेहरे और जनाबे अब्बास की तरफ देख लिया दीदी को बहुत देखकर देखा सकीना बहुत पछताव थी पछताव कहना चाहते हूँ बच्ची तमाशे लगेंगे बच्चिया तैयार घर जाएंगे सकीना बहुत पछताओगी پھر بھائی کے پاس بھائی گے. اب تو ہمارے سارے وفادار ہمیں چھوڑ رہے ہیں. اے بابا کی نشانی تمہاری موجودگی سے میری آنکھوں میں رونق تھی, میری پیٹ میں قوت تھی, مجھ میں طاقت تھی. ہاں اگر تم بھی ساتھ چھوڑنا چاہو تو کوئی مجائزہ نہیں, اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کے لیے ہم تنہا ہی رہ جائیں. جو عباس جان کے خریدنے میں بہن کو خدا حافظ ہے, جہاں میں جائنا اپنے ماں کی طرح پالا تھا جنا کے بعد. تو یہ بچہ پیدا ہوا اور جہاں میں امیر مومنین کی گود میں لا کر دیا گیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا دیا. امام حسین علیہ السلام نے بچہ دیکھتے ہیں بابا اتنا خوبصورت بچہ آگا تمہارے بنی ہاشم, یہ تو بنی ہاشم کا چاند ہے. اور آپ نے اپنی بہن سے دیکھا تھا بہن آپ کا لیں گے یہ بھائی نہیں ہے. بہن کو خدا حافظ. بہن ہفتے میں مندر میں جھکی نگاہ مندر پاس کر ہماری بیویوں نے وہ مندر دیکھا فاطمہ کی بیٹی نے بھائی کو مخاطب کیا ایسے جملے کہے سننے والوں کے دل پٹ جائے. وہاں پاس جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. تم نے جانا ہے سن جھولے سنتے ہوئے جاؤ. جب تم سنتے سنتے شہر میں کھیلتے تھے میں تمہارے کھیلنے سے بہت خوش ہوتی تھی, تمہارے بھاگنے دوڑنے سے بڑا مجھے تسلی ہوتی. ایک روز بابا میرے بازو چوٹ کر رونے لگے. میں نے کہا بابا آپ نے بازو کیوں روئے؟ بابا نے کہہ دیا بیٹا تمہارے بازو میں رسی بندی جائے گی. ارے میں نے تمہاری طرف دیکھ کر کہا بابا سب بات سے سب بھائی ہو چاولی کے لال مجھے یقین ہو گیا میرے بازو میں رسی بندے گی. ہاں تو ہے جس کے لیے اچھا حسین ہوتے ہیں, تو ہے
और कलम दा।